नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में शाम के 8:30 बज चुके हैं और हम ठीक अपने वादे के अनुसार एक बार फिर हाजिर हैं आपके अपने न्यूज मैगजीन प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्कैन में। श्रोताओं, आज के अंक में तमाम खेल खबरों के साथ मैं हूं जया भारती। और श्रोताओं, इन खेल जगत की खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने खेल पत्रकार सचिन कुमार। सचिन जी, आपका स्वागत है।
धन्यवाद जया।
लंदन के ओवल में भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट मैच रोमांचक बना हुआ है। सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्म करने के लिए भारतीय टीम को हर हाल में यह मुकाबला अपने नाम करना होगा।
जी बिल्कुल, अब देखिए प्रयास भी उसी तरीके से चल रहा है, काफी सकारात्मक दिख रहे हैं खिलाड़ी हमारे, एक अच्छी बढ़त हम अब तक बना चुके हैं। मुझे लगता है कि अभी कुछ रन अगर और जोड़ते हैं स्कोर बोर्ड पे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और इंग्लैंड के लिए काफी चुनौतीपूर्ण।
बिल्कुल, इस पर और चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। ओवल में भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच का रोमांचक दौर जारी। डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के ग्रुप सी के मैच में त्रिभुवन आर्मी फुटबॉल क्लब और लद्दाख फुटबॉल क्लब के बीच का मुकाबला 1-1 से ड्रॉ। विश्व टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर में मानुष साह और मानव ठक्कर की जोड़ी फाइनल में पहुंची। और जूनियर एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में सागर और हर्ष ने शानदार जीत दर्ज की। लंदन के ओवल में इंग्लैंड के खिलाफ एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी श्रृंखला के 5वें और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत ने अपनी दूसरी पारी में चाय के विश्राम तक 6 विकेट पर 304 रन बना लिए हैं। भारत ने कल के स्कोर 2 विकेट पर 75 रन से आगे खेलना शुरू किया। अब तक भारत ने 281 रन की बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय क्रिकेट की टीम ने 5 मैचों की सीरीज के अंतिम मुकाबले द ओवल टेस्ट के तीसरे दिन पहले सत्र में बेहतरीन खेल दिखाया। इस सत्र के हीरो रहे, हम कह सकते हैं, आकाशदीप, जिन्होंने गेंद से नहीं बल्कि बल्ले से कमाल दिखाया और शानदार अर्धशतक लगाया।
देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि एक नाइट वॉचमैन से ऐसी पारी की उम्मीद की नहीं जाती है। हम हमेशा यही मान के चलते हैं कि हमने सिर्फ इनको अपना एक विकेट खोने से बचने के लिए भेजा है कि हमारे कोई प्रमुख बल्लेबाज इस समय ना जाए, क्योंकि जब दिन का खेल खत्म होने वाला होता है तो उस टाइम उस इस तरीके का जोखिम नहीं लिए जाते हैं और किसी टैलेंडर को भेजा जाता है और ये उम्मीद की जाती है कि बस ये आज का दिन काट दे, बाकी कल की कल देखी जाएगी। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से आज आने के बाद यशस्वी का उन्होंने साथ दिया और एक अच्छी साझेदारी दोनों ने मिलकर बनाई, आप देखिए कि 2 विकेट 77 रन पे खोने के बाद, जब 70 रन पे खोने के बाद ये 107 रन की साझेदारी उन्होंने और की तीसरे विकेट पे, तो ये काफी महत्वपूर्ण रही क्योंकि एक हमें अच्छा टोटल बनाना था इस मैच में, इस पारी में खास तौर से, क्योंकि हम दूसरी पारी में बहुत जल्दी सिमट गए थे और हमसे जो है 23 रन की बढ़त ले ली थी इंग्लैंड की टीम ने, तो हमारे सामने ये चुनौती थी कि कम से कम हम 350-350 रन स्कोर बोर्ड पे रखें ताकि उनको जब खिलाएं तो, क्योंकि पर्याप्त टाइम है अभी मैच में बचा हुआ, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मैच हमारे हाथ से निकल जाए, तो हम 10 विकेट लेने में सफल रहे, इतने रन होने चाहिए गेंदबाजों के पास।
बिल्कुल, आकाशदीप ने दिन की शुरुआत से ही इंग्लैंड के गेंदबाजों पर आक्रमण शुरू कर दिया और टेस्ट क्रिकेट को अपना पहला अर्धशतक पूरा किया। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 247 रन पर सिमटी थी। इंग्लैंड के लिए जैक क्रॉली ने 64 और हैरी ब्रुक ने 53 रन बनाए थे। भारत के लिए मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने 4-4 विकेट लिए थे और इन्होंने इंग्लैंड को बड़ी बढ़त हासिल करने से रोका।
नहीं, इसमें कोई शक नहीं, गेंदबाजी हमारी पहली सत्र में जरूर थोड़ी सी कल ऐसी नहीं दिखी थी कि हम जिससे कह सकें कि वो अप टू द मार्क थी, काफी रन बन रहे थे और ये इंग्लैंड ने बहुत अच्छा खेल दिखाया उस सत्र में और एक तरीके से वो एक रिकॉर्ड प्रदर्शन था कि वो 88 गेंदों पे 100 रन बनाने में सफल हुए थे। इससे पहले सिर्फ 2 बार ऐसी टीमें रही हैं जिन्होंने इससे कम गेंदों में 100 रन से ऊपर जोड़े हैं उस सत्र में। उसके बाद लेकिन कमाल हुआ, हमारे गेंदबाज थोड़े से अनुशासित नजर आए, उन्होंने आपस में चर्चा करी कि किस तरीके का खेल हमें दिखाना है। खासतौर से प्रसिद्ध कृष्णा ने जैसा बताया दिन के खेल के बाद, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने आपस में यही बात की कि भाई अब जो हो चुका है वो हो चुका, अब हमें मैच में लौटना है, वापसी करनी है, और उन्होंने वो करके दिखाया और जो 4-4 विकेट उन्होंने लिए हैं ये बहुत ही एक शानदार प्रदर्शन है। आप ही देखिए कि एक टीम को निपटाने के लिए, जबकि हमारे प्रमुख गेंदबाज नहीं थे जसप्रीत बुमराह, चूंकि एक मैनेजमेंट के तहत वो 3 मैच खेलने के लिए ही वहां उपलब्ध थे, तो इसलिए ये एक अच्छा, मतलब हम कह सकते हैं कि ये हमारे दूसरे दर्जे की गेंदबाजी वहां पे थी, लेकिन उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और इंग्लैंड को जो है एक ठीक ठाक एक रन उस पर रोकने की कोशिश करी।
बिल्कुल, भारत की पहली पारी 224 रन पर सिमटी थी। सर्वाधिक 57 रन करुण नायर ने बनाए थे, गस एटकिंसन ने 5 विकेट लिए थे। तो कल पहली पारी में फैंस को करुण नायर और वॉशिंगटन सुंदर से बड़ी पारी की आस थी, लेकिन उन्होंने निराश किया।
हाँ देखिए, अब दिन होता है, लेकिन करुण नायर ने काफी अच्छा खेल दिखाया, क्योंकि आप देखिए कि कितने लंबे समय बाद, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि एक हाफ सेंचुरी, एक 300 रन की पारी खेलने के बाद उनकी आई है, वो भी 9 साल बाद। तो लेकिन अब यह है कि वो टीम के लिए काफी उपयोगी साबित हुई, भले ही उन्होंने अर्धशतक का ही योगदान दिया, लेकिन जिस तरीके से गेंदबाज हावी थे, जिस तरह से विकेट उस टाइम खेल रही थी, मतलब तेज गेंदबाजों के लिए मददगार थी हम ये कह सकते हैं, तो उस परिस्थितियों में उन्होंने जिस तरीके की पारी खेली, निश्चित तौर पर वो एक सराहनीय प्रयास था और हमारी टीम को उन्होंने अच्छा योगदान दिया, जिसकी वजह से अभी हम मजबूत बने हुए हैं।
यशस्वी जायसवाल की भी हम बात कर लेते हैं, जो अभी काफी लय में दिख रहे हैं।
नहीं बिल्कुल, देखिए उन्होंने पहले टेस्ट में शतक मारा, उसके बाद जाते जाते अब ये आखिरी पारी में शतक मार के वो जा रहे हैं। इस बीच में जरूर हम ये कह सकते हैं कि उनका प्रदर्शन थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रहा था, एक दो बार उनकी 50 आई, लेकिन दो उन्होंने शून्य भी बनाए, बिना खाता खोले उनको जाना पड़ा था। तो ये थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा प्रदर्शन था, लेकिन जिस तरीके से वो समापन कर रहे हैं वो बहुत ही शानदार है। आज अगर वो इस तरीके से टिक के नहीं खड़े रहते तो हमें लगता है कि हमारे बल्लेबाज वो आया राम गया राम वाली स्थिति हो जाती, क्योंकि एक बल्लेबाज का जरूर खड़े रहना जरूरी होता है। हालांकि पहले तो उनको आकाश से काफी मदद मिली, आकाश और उन्होंने मिलकर, जैसा हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि उन्होंने शतकीय साझेदारी करी, लेकिन बाद के बल्लेबाज जल्दी जल्दी आउट होते रहे, लेकिन तब तक जो है जब वो गए हैं तो करीब 250 रन की हम बढ़त पे थे, तो ये एक अच्छा संकेत था कि अब बाकी के बल्लेबाज अगर थोड़ा थोड़ा योगदान भी देते हैं तो टीम को उस स्थिति में ले जा सकते हैं जहां से वापसी की पूरी संभावना है और इस मैच पे हमारी पकड़ बन जाए।
बिल्कुल, अब थोड़ी देर पहले जिस तरह से आपने बात की कि टीम इंडिया इस मुकाबले में अपने प्रीमियर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के बिना खेल रही है, वहीं इंग्लैंड की टीम भी बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर जैसे सितारों के बगैर खेल रही है। कल इंग्लैंड के तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स को भी चोट के कारण इस मैच से बाहर होना पड़ा, तो इससे मेजबान टीम को कितना बड़ा झटका लगा है और भारतीय टीम को कितना लाभ है?
हाँ नहीं देखिए, ये तो है, देखिए हमारी टीम में भी 4 परिवर्तन थे इस मैच में और उनकी टीम में भी 4 परिवर्तन थे। कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी हमारे भी मौजूद नहीं है, कुछ उनके भी मौजूद नहीं रहे, लेकिन क्रिस वोक्स का मैच के बीच से हटना ये थोड़े से उनके लिए ज्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि अभी जो सब्स्टिट्यूट आएंगे वो उनकी जगह गेंदबाजी नहीं कर सकते। क्रिस वोक्स ने पहली पारी में एक विकेट लिया था, तो मतलब बहुत बड़ा योगदान नहीं कह सकते, लेकिन कम से कम टीम के लिए और उन्होंने गेंदबाजी करी थी, वो विकल्प उनका खत्म हो गया। बल्लेबाजी भी नहीं कर सकता सब्स्टिट्यूट प्लेयर, क्योंकि आईसीसी का ये रूल है, तो ये नुकसान उनको होगा। अब पहली पारी में सिर्फ 9 ही बल्लेबाज खेले उनके, ये नुकसान उनको दूसरी पारी में भी उठाना पड़ेगा। तो ये मौका हमारे लिए ऐसा बन गया कि जैसे हम मतलब एक 9 विकेट 9 बल्लेबाजों वाली टीम से खेल रहे हैं, तो ये इसका लाभ उठाने की जरूरत है और मुझे लगता है कि भारतीय टीम पूरी तरीके से
लाभ उठा रही है
जी, उस स्थिति में पहुंच रही है जहां से उसको ये फायदा मिल सकता है
जी। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारतीय क्रिकेट टीम अभी 1-2 से पीछे है, अगर भारत यह टेस्ट जीतता है तो सीरीज 2-2 से बराबरी पर रहेगी। जमशेदपुर के जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज 134वें डूरंड कप फुटबॉल के ग्रुप सी के मैच में नेपाल त्रिभुवन आर्मी फुटबॉल क्लब और लद्दाख फुटबॉल क्लब के बीच का मुकाबला 1-1 की बराबरी पर ड्रॉ हुआ। प्रतियोगिता के ग्रुप सी में अपने दोनों मुकाबले जीतकर जमशेदपुर एफसी टीम अंक तालिका में प्रथम स्थान पर बनी हुई है। ग्रुप सी में 4 ग्रुप हैं, जमशेदपुर एफसी, इंडियन आर्मी एफसी, त्रिभुवन आर्मी एफटी और लद्दाख एफसी की टीमें जो अंक तालिका में शीर्ष पर स्थान हासिल करने के लिए राउंड रॉबिन मैच खेल रही हैं।
देखिए अभी तो शुरुआती मैच है जया, तो इसलिए अभी कुछ भी भविष्यवाणी करना बहुत ठीक नहीं है, लेकिन अभी जिस तरीके से आज नॉर्थ ईस्ट का मैच है और वो मलेशियन आर्म फोर्सेस के खिलाफ बहुत अच्छा खेल रही है, तो जाहिर सी बात है कि उनके पक्ष में परिणाम रहना है और वो गत विजेता हैं और उनकी इस तरीके से शुरुआत अगर होती है ग्रुप सी में तो ये बहुत बढ़िया है। और दूसरा मैच जो है वो नॉर्थ ईस्ट ये त्रिभुवन आर्मी का, जैसे आपने बताया तो वो भी एक ड्रॉ पे छूटा है, तो अभी चूंकि एक ग्रुप से चीफ टीम को जाना है अगले क्वार्टर फाइनल मैच के लिए, बाकी 2 बेस्ट टीमें आएंगी बाकी 6 ग्रुप से, तो वो 8 टीमों का जो बनेगा उसके लिए अभी कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब तक कि सारी टीमें अपने मैच नहीं खेली थी, लेकिन शुरुआती मुकाबले जिस तरीके से हो रहे हैं, कल जैसे एक मैच में 8 गोल दागे गए, तो वो इस तरीके से देखते हुए लग रहा है कि काफी रोमांचक होने वाला है इस बार का टूर्नामेंट कप।
जी, त्रिभुवन आर्मी के लिए इस बार मौका था, क्योंकि पिछला मैच भी वो नहीं जीत पाई थी, अपने अभियान की अब तक वो शुरुआत नहीं कर सकी हैं, लेकिन ये मुकाबला भी ड्रॉ पर रह गया। अब चूंकि फुटबॉल इंडिया में एक बहुत ही पसंदीदा खेल है, लेकिन फिर भी हमारे भारतीय खिलाड़ी उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अगर हम देखें तो। इस बीच खबर है कि फुटबॉल की वैश्विक संचालक संस्था फीफा ने भारत के उभरते हुए प्रतिभाशाली फुटबॉल खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए के मकसद से आज अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के सहयोग से देश में युवाओं के लिए अपनी पहली प्रतिभा अकादमी शुरू की है। फीफा ने इस अकादमी के लिए AIFF और तेलंगाना सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह फुटबॉल के समावेशी और जमीनी स्तर के विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करेगा। ब्राजील में विश्व टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर प्रतियोगिता में भारत ने आज इतिहास रच दिया। मानुष शाह और मानव ठक्कर की जोड़ी फाइनल में पहुंच गई है। किसी भारतीय जोड़ी ने पहली बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई है। एक रिपोर्ट।
पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में भारत की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी मानव ठक्कर और मानुष शाह ने चीनी ताइपे के हुआंग यान चेंग और कुओ गुआन होंग को 5-11, 11-9, 11-6, 8-11, 11-5 से हराया। अब उनका सामना जर्मनी की दूसरी वरीयता प्राप्त बेनेडिक्ट डूडा और डोंग क्यू से होगा। महिला डबल्स में मनिका बत्रा और स्वास्तिका घोष की जोड़ी को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। महिला सिंगल्स में मनिका बत्रा अंतिम 16 में प्रवेश कर चुकी है। वहीं पुरुष सिंगल्स में मानुष शाह भी अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में हरमीत देसाई को विश्व रैंकिंग में 20वें नंबर पर काबिज कोरिया गणराज्य के ओ जुन सुंग से हार का सामना करना पड़ा। मिक्स्ड डबल्स में शीर्ष वरीयता प्राप्त मानुष शाह और दिया चितले की जोड़ी ने भी सेमीफाइनल में चिली के निकोलस बर्गोस और पॉलिना वेगा को 3-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में उनका सामना कल जापान की क्वालिफायर जोड़ी सातोशी आइदा और होनोका हाशिमोतो से होगा। मनोज, स्पोर्ट्स कैन।
मानुष और मानव की जोड़ी फाइनल में पहुंच गई है। पहली बार भारतीय जोड़ी इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है। क्या लगता है फाइनल में ये इस तरह का कमाल दिखा पाएंगी?
नहीं, बिल्कुल। देखिए, अब ये टॉप सीड जोड़ी भी थी वहां पे, तो उसका प्रदर्शन मुझे लगता है कि अपनी सीडिंग के साथ मैच भी कर रहा है और वो उसी तरीके का परिणाम आना भी चाहिए। और लगातार जो है टेबल टेनिस में अच्छी हमें खबरें भी मिल रही हैं। अब देखिए कि विश्व स्तर पे जो भी बड़ी प्रतियोगिताएं होती हैं, पहले हमें इस तरीके की कामयाबी नहीं मिलती थी, लेकिन अब खिलाड़ियों ने वो चीज बदली है और हम पदक लेके आने लगे हैं, खिताब जीतने लगे हैं, और वही टेबल टेनिस में भी हो रहा है।
बैंकॉक में खेले जा रहे अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के सागर ने 55 किलोग्राम वर्ग में और हर्ष ने 60 किलोग्राम वर्ग में आज शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दौर में प्रवेश किया। सागर भूटान के ताशी युएजर के खिलाफ तीनों दौर में बेहतर मुक्केबाज रहे, जबकि हर्ष ने चतुराई से खेलते हुए चीन के जियाबाओ युआन को हराया। जिस तरह से ये युवा मुक्केबाज प्रदर्शन कर रहे हैं, भविष्य में क्या देखते हैं आप इन्हें?
नहीं, देखिए, मुक्केबाजी में तो हमारा बहुत अच्छा चलता आ रहा है। जब से विजेंदर ने बीजिंग में पदक जीता था, उसके बाद से हमारे मुक्केबाजों ने कभी भी निराश नहीं किया है। ओलंपिक स्तर पे भी काफी अच्छा करते हैं और हर बार कोई ना कोई हमारा मुक्केबाज पदक लेके आता है। तो ये युवा है और यही आगे चल के हमारे लिए, अब सीनियर स्तर पे खेलेंगे तो निश्चित तौर पे, किसी भी खेल में बेंच स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आप ग्रॉस रूट से खिलाड़ी हमारे नहीं आएंगे तो सीनियर लेवल पे भी वो प्रदर्शन देखने को नहीं मिलेगा।
जी, मकाओ ओपन बैडमिंटन से खबर है कि लक्ष्य सेन और थारून मन्नेपल्ली के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में हार के साथ ही आज भारत का अभियान वहीं समाप्त हो गया है। अब चूंकि समय इजाजत नहीं दे रही है हमें और चर्चा करने के लिए, तो हम श्रोताओं से यहीं विदा लेंगे। कल इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। सचिन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमसे खेल खबरों पर बात की, इसके लिए धन्यवाद।
धन्यवाद जया।